मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हरि हरि ओ हृदय में भाव होता है, नाभि केंद्र के इलाकों में क्रिया शक्ति होती है और ऊपर के केंद्र में विचार शक्ति होती है। इसलिए कोई मांगलिक काम करते समय ललाट पे तिलक करके फिर शुरू किया जाता है। दूसरी बात, मांगलिक काम करने की तो क्रिया शक्ति चाहिए, मांगलिक काम के लिए मांगलिक भाव चाहिए, लेकिन इन दोनों की रक्षा तो विचार से ही होगी। इसलिए भी ड्यूटी पे तिलक नहीं करते, यहाँ तिलक नहीं करते, ललाट पे तिलक करते। जिस देश में इस योगिक विद्या का पता नहीं, उस देश की महिलाएं तिलक नहीं लगाती। जिस देश में इस योगिक विद्या का पता है, उस देश की महिलाएं तिलक करती। स्त्री जात भावना प्रधान होती। स्त्री जात को बालक को जन्म देना होता है, इसलिए उसका मन स्वाधिष्ठान और मणिपुर केंद्र में ज्यादा रहता है। मन और प्राण गर्भधारण करती तो उस इलाके में उसका मन ज्यादा रहता है। इसलिए मंदिरों में, टूणा फूणा में अथवा भय में या संशय में स्त्री जाति की संख्या जितनी होगी उतनी पुरुष जाति की नहीं होती। तो नीचे के केंद्र में संदेह भी रहता है, भय भी रहता है, श्रद्धा भी रहती है। तो श्रद्धा तो अच्छी चीज है, लेकिन वो श्रद्धा, भय और संदेह उन केंद्रों में रहता है। जैसे बालक को कुछ होने जाए, ये भय संदेह होना, सावधानी होना तो अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी ऐसी मन की आदत बनी रहे। और स्त्री जब स्वर्गवास होती है तो उसके अंतःकरण में अगर कमजोरी की भावना है तो मरने के बाद क्या पता कौन सी आत्मा के प्रभाव में आ जाए, उसकी मरने के बाद क्या पता कैसी गति हो। इसलिए दयालु ऋषियों ने स्त्री का छठा केंद्र भी पुरुष को तो स्वाभाविक विचार प्रधान का है और स्त्री को भावना प्रधान का है। तो भावना के साथ साथ संदेह और भय, वहम, टूणा फूणा, ताबीज वालों के पास पुरुषों की लाइन नहीं देखोगे जितनी स्त्रियों की होगी। मनोती मानने में भी अथवा संशय करने में भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संख्या अधिक मिलेगी। तो दयालु पुरुषों ने सोचा कि स्त्री में ये पालन करने की, भरण पोषण करने की, गर्भ धारण करने की कुदरत ने जो स्वाभाविकता दी है, उस स्वाभाविकता का तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में उस स्वाभाविकता से अस्वाभाविक उसकी गति न हो जाए, क्योंकि नीचे के केंद्रों में ही रहे, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर केंद्र में, तो मरने के बाद उसका मन कमजोर होगा तो किसी भी आत्मा का, किसी भी जीव का, किसी भी प्रकृति के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ जाए। इसलिए स्त्री को तिलक करने की रीत चला दी। पुरुष को जरूरी नहीं स्त्री रोज तिलक करे, फिर स्त्री रोज तिलक करे तो स्त्री का मनोबल बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि पुरुष को भी नाथ ले। इसलिए फिर और खोजा कि सुहागिन स्त्री माघ डाले, माघ में सिंदूर डाले, अथवा तो एक तिलक तो अपना यहाँ करे, दूसरा सुहाग की निशानी के मेरे ऊपर पति का अनुशासन अथवा पति के विचार, पति की आज्ञा, तो पति पत्नी में मेल रहने के लिए फिर वो दूसरे तिलक की भी जरूरत पड़ी। तो साधु लोग तो ये पूरा ललाट रंग लेते हैं, ये है क्या है? जैसे गाय भैंस घास खाती है लेकिन सार सार गेहूं और बाजरी मनुष्य खा लेता है, ऐसे ही शरीर में जो हमारी शक्ति पैदा होती है, कामकाज में मोटी मोटी शक्ति खर्च होती है, लेकिन विचार में सूक्ष्म खर्ची शक्ति खर्च होती है। दही तो 5 किलो होगा लेकिन उसमें से घी 5 किलो नहीं निकलेगा, 5 पाव भी नहीं निकलेगा, 500 ग्राम भी शायद निकलता हो कि नहीं, तो वो तो सार है। ऐसे हम जो खाते पीते हैं उससे जो सार चीज शरीर में बनती है, एकदम सूक्ष्म सार, तो विचारवान जो सत्संग करते हैं उनको तो वो सार वस्तु खर्च होती है, वो शारीरिक शक्ति से 13 गुनी ज्यादा। बौद्धिक काम में, सार काम में 13 गुनी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो जो संत लोग हैं उनका तो बौद्धिकता की पराकाष्ठा पे सत्संग करने की जिम्मेदारी होती है, तो वे लोग अगर चंदन तिलक पूरे ललाट में लगाएंगे तो बोलने से एक तो मस्तिष्क पे गर्मी नहीं चढ़े और दूसरा उन ज्ञान तंत्रों को इस प्रकार का थोड़ा बहुत खुराक भी मिल जाए। इसलिए साधु लोग अथवा व्यास का पहले चंदन से पूजन करके बाद में कथा होती, फिर तो उनके आगे फूल रखे जाते हैं, संतों के आगे फूल रखते हैं, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे रामायण की हो, चाहे गीता की हो, चाहे कोई महापुरुष हो, तो वे आए उसके पहले उनका चंदन तिलक और फूलों से सत्कार पूजन होता है। तो फूल क्यों रखने पड़ते हैं? ताजे फूल, आजकल तो अमेरिकन फूल में केवल देखने की शोभा है, सुगंध नहीं, ताजे फूलों में सात्विक सुगंध से मन प्रफुल्लित रहता है, आह्लादित रहता है, मन को आनंदित रखने में ताजे फूल सहायक होते हैं। सत्संग करने वाले महापुरुष अगर चाय पी के सत्संग करेंगे तो चाय छाप सत्संग होगा, और भगवान का ध्यान भजन करके अपना अंतःकरण प्रफुल्लित करते हैं तो जैसे उनका हृदय खिला है ऐसे खिले हुए फूल उनके आगे धर के फिर उस खिले हुए हृदय की खिलावट सारे समाज को मिले, इसलिए वो व्यवस्था की। यहाँ फूल पड़े हैं, ये फूल पड़े, जैसे रास्ते में जाते तो कुछ कोई गंदी चीज देखते हैं तो मन सुकुच आता है, चेहरे पे सिकन आ जाती है, ऐसे फूल देखकर चेहरे पर प्रफुल्लित आ जाती है, तो साधक अपने घर में फूल क्यों रखते पूजा के रूम में? क्योंकि पूजा के रूम में भी रोज नहीं तो कभी कभार ताजे फूल हो सुगंधी वाले, तुम पूजा के रूम की महत्ता बढ़ती, प्रफुल्लितता रहती। बोले अगरबत्ती कर दे, तो अगरबत्ती तो ठीक है, लेकिन अगरबत्ती आजकल केमिकल का उपयोग बहुत होता है, परफ्यूम वर्फ्यूम, इससे सुगंध जैसा तो लगता है लेकिन सात्विकता का ह्रास होता है। इसलिए अच्छी सात्विक अगरबत्तियां हो तो ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मिलता है माल, वो नाम बड़े दर्शन छोटे एडवर्टाइज पैकिंग ये वो, परफ्यूम वर्फ्यूम का उपयोग होता है। इसीलिए समिति वालों ने अपने घर की अगरबत्तियां बनाना, साधक तक पहुंचाना, ये सब किया। जैसे सिनेमा है, देखने में तो सिनेमा अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन सिनेमा का परिणाम जवानों से पूछो, समझदारों से, वो तो ये कहेंगे सीन सिनी सीन और मां, जो सत्यानाश करने की जननी हो उसका नाम है सिनेमा। सिनेमा से चरित्रहीन होते हैं,